وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم. شاید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا مشرکین سے کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ یہ اپنے محبت کا مرکز ان بتوں کو بناتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی یہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. یحبونہم کحب اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ذات ہے میرے دوستو، وہی محبت کے لائق اور قابل ہے. کیونکہ میرے مرشد، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کیونکہ محبت کے لیے جس جمال اور کمال کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. باقی جتنے کمالات ہیں اور جتنا حسن اور جمال ہے وہ سب فانی ہے. لیکن اب بادشاہ کی جو بادشاہت ہے، اب ہمارے یہاں صدر وزیر اعظم 5 برس کے لیے منتخب ہوتے ہیں، 5 برس کے بعد سب برابر. سر ہے وہ، اس کی 60 سال انتہا ہے، 60 برس کے بعد ختم. مال و دولت ہے، آج میرے پاس مال ہے کل تیرے پاس مال ہے. اور پھر انسان جب مر گیا تو آہ، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسی عجیب، کتنا پیارا شعر سے سمجھایا. آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، جب دنیا سے کوئی آخرت کو جاتا ہے، آخرت کا سفر ہونے والا ہے. اس لیے میرے مرشد کی ایک بات اور بھی یاد آئی کہ زندگی کا عجیب ہے ویزا، زندگی کا عجیب ہے ویزا، کب بلا لے خدا نہیں معلوم. کسی عالم کو نہیں پتا، کسی اللہ والے کو نہیں پتا، کسی سائنسدان کو نہیں پتا کہ اس دنیا کا جو ہمارے زندگی کا ویزا ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ اس کے بارے میں کسی کمپیوٹرائز نظام میں نہیں ہے. یہ زندگی کا عجیب ہے ویزا، کب بلا لے خدا نہیں معلوم. جب یہ ویزا ختم ہوتا ہے تو ہم کو اللہ تعالی کے پاس جانا ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں ہم کو جانا ہے. اور فرمائے کہ اس میں توسیع بھی ہے ناممکن، یعنی اس میں ایکسٹینشن اور اس ویزے کو بڑھایا نہیں جا سکتا. جیسے پاکستان کو کوئی ویزا لے کر آئے تو اگر درخواست دے تو ویزا بڑھ جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں جاتا ہے تو اس ویزے کو بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن زندگی کا جو ویزا ایسا عجیب ہے کہ یہ بڑھایا نہیں جا سکتا، بڑھ نہیں سکتا، اس میں توسیع بھی ہے ناممکن اور ہے میعاد کیا نہیں معلوم. یعنی یہ ویزا ختم کب ہو رہا ہے، ایکسپائر کب ہو رہا ہے، اور اس کی ڈیوریشن مدت کیا ہے کسی کو نہیں پتا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں اتنے برس جیوں گا اور اتنے برس جو ہے میں فلاں وقت مروں گا، پہلے اپنا مکان بناؤں گا، پہلے اپنا فلاں کام کروں گا، اتنا پیسہ جمع کروں گا، پھر اس کے بعد جاؤں گا دنیا سے. اور ذرا ابھی میں کسی کاموں میں مشغول ہوں، فارغ ہو جاؤں پھر اللہ اللہ کروں گا، ابھی میں مصروفیت ہے. تو میرے دوستوں، زندگی کا ایسا عجیب ویزا ہے کہ جب نہ اس کی مدت معلوم ہے کہ آدمی کتنا جیے گا. لہذا کتنے باپوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو دفن کیا ہے، کتنے ماں باپ نے، آئیے مولوی صاحب آئیے. ہاں اچھا، تو تھوڑا سا ادھر بیٹھو نا، ادھر دری پر تو بیٹھو یار، اب حضرت تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے نا، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، برکت میں برکت. سروت حسین کیا بولتا ہے معلوم ہے نا. زندگی کا اتنا عجیب و غریب ویزا ہے کہ کسی آدمی کو اس کی خبر نہیں ہے. دیکھو وہاں اور دری ہے نا، उधर बिछा दो और वहां लाइट भी जला दो, इनको आगे कर दो। जिंदगी का वीजा आप मेरे मुर्शिद फरमाते हैं इतना अजीब और गरीब वीजा है कि इसकी मुद्दत का पता नहीं है, खबर नहीं है किसी को। और अल्लाह ताला फरमाते इजा जा जलुहुम फला यस्ताखिरुन सातम वला यस्तकदिमुन, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो एक साथ, जिसको हम यूं तर्जुमा कर सकते हैं कि एक लम्हा, एक सांस आगे पीछे नहीं हो सकती। ऐसा अजीब है ये कि वो कहे इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया मशहूर है, मेरे मुर्शिद ने सुनाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक हिंदुस्तान का रहने वाला शख्स मौजूद था। इज़राइल अलैहिस्सलाम उस जमाने में नजर आते थे, लिहाजा इज़राइल अलैहिस्सलाम ने गुजरे तो उस हिंदुस्तान के जो शख्स था उस हिंदुस्तानी को घूर के देखा। इज़राइल अलैहिस्सलाम जिसको घूर कर देख ले, मलकुल मौत क्या आलम होगा, बस वही आलम हुआ उसका, ब्लड प्रेशर ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर नीचे हो गया। उसने फौरन कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि मुझे इन्होंने घूर कर देखा है, लगता है ये मुझे तलाश कर रहे हैं, लिहाजा आप मुझे जल्दी कीजिए, मैं वतन से दूर हूं, मैं अपने वतन में मरना चाहता हूं, आप मुझे जल्दी से आप वहां पहुंचा दीजिए, आपके पास जिन भी हैं और अल्लाह ताला ने जिनों पर को भी मुसख़र फरमाया था और हवाओं को भी, अल्लाह की शान। लिहाजा मेरे मुर्शिद ने सुनाया एक दफा मच्छर ने दावा दायर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कि ये जो हवा है ना, ये हवा की वजह से हम जो है अपने मरीज को इंजेक्शन से नहीं लगा सकते, तो हम इंजेक्शन लगाने लगते हैं कि पीछे से हवा आ जाती है ये हमें उड़ा के ले जाती है, लिहाजा उसके खिलाफ हम दावा कर रहे हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई देखो बात यह है, तुम मुद्दाई हो, तुमने दावा किया और मुद्दा अलै जिस पर दावा है उसको उसके बुलाए बगैर कैसे फैसला होगा, एक तरफा फैसला तो हो नहीं सकता, दोनों को मौजूद होना चाहिए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि आ जाओ। अब जब हवा आई तो मच्छर भागा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरे भाई तुम कहां जाते हो, अब हमने मुद्दा अलै को बुला दिया तो मुद्दा ही भाग रहा है, उनका झगड़ा ही तो यही है कि जहां ये होती है हम रह नहीं सकते वहां पर, लिहाजा जहां ये है वहां कैसे रहें। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस शख्स ने अर्ज किया कि हजरत मुझे आप जल्दी से पहुंचा दीजिए, हिंदुस्तान भिजवा दीजिए, हवा और जिन आपके मुसखर हैं। तो हजरत ने हुक्म दिया तो फौरन वहां हिंदुस्तान, थोड़ी देर में इज़राइल सलाम फिर वापस गुजरे, पूछा कि भाई इज़राइल सलाम को बुलाया कि भाई इज़राइल ठीक है कि अल्लाह ताला के हुक्म से आप रूह को कब्ज फरमाते हैं, लेकिन ये घूर कर इनका खून क्यों खुश्क करते हैं, आप इनको घूरते क्यों हैं लोगों को कि जिससे इनका खून भी खुश्क हो जाए। अब देखिए ना, इंजेक्शन लगाना है मरीज को और डॉक्टर इतनी लंबी सुई पहले उसको दिखाए कि देखिए ये इंजेक्शन लगेगा तुम्हें, तो इसी में मरीज का खून खुश्क हो जाएगा कि नहीं। तो फरमाते हैं कि फरमाया कि भाई ऐसा कर दो, कहा हजरत आप नबी हैं और मेरा मकसद उसको डराना नहीं था, मैंने उसको खौफ वाली निगाह से नहीं देखा था, गजबनाक, मैं तो इस्तेजाब और मुस्तअजाबाना हैरत की निगाह से उसे देख रहा था कि मुझको अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म हुआ था कि इस बंदे की रूह को हिंदुस्तान के फला शहर के फला इलाके फला कब्जे में इसकी रूह कब्ज करनी है और ये यहां बैठा हुआ, तो मैं हैरत में देख रहा था कि अल्लाह ताला का तो हुक्म है कि और चंद सेकेंड और मिनट बाकी है इसकी रूह कब्ज करनी है और ये यहां बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह के अजीब शाह इसलिए मैंने उसको हैरत से देखा था, लेकिन जब मैं वहां गया तो देखा वो वहीं बैठा हुआ। मेरे दोस्तों ऐसी अजीब है ये मौत के, हमें ये वीजा कब खत्म हो रहा है, वीजा इसका खत्म जिंदगी का कब खत्म हो रहा है किसी को नहीं पता, आखिरत का सफर शुरू हो जाएगा और फिर इसमें ये बुकिंग हमें नहीं करानी पड़ती सारे कागजात तैयार हैं, सिर्फ गाड़ी आएगी, उसमें पिकिंग पिक एंड ड्रॉप सर्विस मौजूद है, यानी ड्रॉप किया था वो भी सर्विस, अब पिक करेंगे हमें उठाएंगे वो सर्विस भी मौजूद है, उसके लिए हमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से सब इंतजाम मौजूद है, बस वो आएंगे और हमें लेकर चले जाएंगे। फिर जो बकिया रह जाएगा वो रिश्तेदारों की तसल्ली के लिए कि अच्छा चलो अब तुम इसकी तजहीज और तफसील और तदफीन करते रहो, और तकफीन करो और तदफीन करो, अब ये रिश्तेदार करेंगे, लेकिन जो असल जो चीज थी वो ले जाने वाले ले जाएंगे। तो ये अर्ज कर रहा था कि ये ऐसी चीज है जिंदगी कि आह कि इंसान आगे पीछे कर नहीं सकता, कि कोई मालदार बोले कि भाई ये देखो मैं तुम्हें शानदार गाड़ी दे देता हूं, तुम इस गाड़ी के अंदर 1.5 करोड़ वाली गाड़ी में तुम घूमो, क्लिफ्टन की सैर करो, अच्छे तुम्हें जूते दिला देते हैं, तुम्हें घड़ी दिला देंगे और दुबई भिजवा देते हैं, वहां फेस्टिवल हो रहा है उस फेस्टिवल में शिरकत करो और मजे करो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन चीजों की जरूरत नहीं है, या उसे कहे सुलेमान को इन चीजों की जरूरत नहीं, या हम उनसे अर्ज करें हम आपकी शादी करा देंगे 16 साल वाली से, आप शादी कर लीजिए, कुछ दिन यहां गुजारिए, हनीमून मनाइए, जब तक हम क्या करें हम सलाते तौबा पढ़ के अल्लाह ताला सब ने गुनाहों की माफी मांग ले। तो मेरे दोस्तों मेरे मुर्शिद फरमाते के इतनी मोहलत और फुर्सत भी नहीं मिलेगी हमें, इसलिए जो हमारी जान में जान है, हमारी जिंदगी में जो भी जिंदगी मौजूद है, आह मेरे मुर्शिद मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर पढ़ा करते हैं कि जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, जालिम अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया। अभी मौत अभी जिंदगी बाकी है, अभी तौबा कबूल हो रही है, जल्दी से एक मुट्ठी दाढ़ी रख ले, जल्दी से अपने मालिक को मना ले, जल्दी से जो नमाज है जिक्र तिलावत जो आमाल और करेंसी काम आने वाली है जल्दी से उस करेंसी को जमा कर ले, क्योंकि जिस माल को हम जमा कर रहे हैं आ ये माल हमारे लिए आखिरत में काम नहीं आएगा, ये गाड़ियां ये डंपर ये मशीनें ये दुकान और ये रुपया ये पैसा ये नए मोबाइल ये बैंक बैलेंस ये काम नहीं आएंगे, ये वहां का नहीं, यहां की तो जरूरत है वहां की जरूरत नहीं, यहां इस्तेमाल करो तुम आ। लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते तुम इन चीजों को इस्तेमाल तो करो, माल को इस्तेमाल करो, लेकिन खबरदार माल को अपने दिल में जगह मत दो, ये इसके लिए नहीं है। अगर तुमने इसको दिल में घुसाया, दिल में इसको बसाया, माल को घुसाया, तो नतीजा वैसा ही होगा जैसे कश्ती के अंदर पानी अगर आ जाए तो कश्ती की हलाकत का जरिया बन जाता है। लिहाजा माल की मिसाल पानी की तरह है और हमारे दिल की मिसाल कश्ती की तरह है, कि अगर कश्ती और पानी जरूरी चीज है लेकिन पानी कश्ती के नीचे होना चाहिए तो क्या होता है वो कश्ती के चलाने का जरिया बनता है, और अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो फिर क्या होता है वो कश्ती को हलाक कर देता है। लिहाजा उसी तरह से ये दुनिया हमारी जरूरत के लिए मिसल पानी के है, अगर ये इसके नीचे रहेगी तो मेरे दोस्तों हमारी दीनी तरक्की और हमारी दुनियावी जरूरियात के लिए जरूरत है, लेकिन अगर इसको हमने दिल में बसा लिया तो नतीजा ये होगा कि हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी हमारी आखिरत भी बर्बाद होगी, और फिर जिससे दिल लगाया मरने के बाद हमारे साथ कोई चीज नहीं जाएगी, ना हमारे मोबाइल ना हमारी घड़ियां हमारे चश्मे हमारे लिबास हमारी गाड़ियां हमारे बैंक बैलेंस क्रेडिट कार्ड वगैरह और जूते जिन पर हम बड़े फखर करते हैं ना, ये कोई चीजें नहीं चाहिए। ये जो इज्जतें कि बड़ी इज्जतें जी हम फखर करते हैं सरकारी ओहदों के ऊपर या फला चीज के ऊपर, ये कोई चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। आह जब दुनिया से कोई आखरत को जाए है, आह जब दुनिया से कोई आखरत को जाए है, बस अकेला जाए है और सब धरा रह जाए है, जितनी चीजें मेरे दोस्तों हमारी सब यही रह जाएगी। अब आप बताइए जब मैं यहां से जाऊंगा तो ये अपने साथ यहां क्या लेकर जाऊंगा, ये कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। अजीब बात है कि कफन पहनाने से पहले कपड़े भी उतार ले जाते हैं, और उतारे नहीं जाते बल्कि कैंची से काट के उतारते हैं। क्या अजीब मंजर है देखो कि कैंची से उतार के काटा जा रहा है, घड़ियां उतर रही है, चश्मे उतर रहे, कुछ साथ में नहीं जा रहा, जितना माल सब चीजें जमा की थी वो सब यही रह गया और अब हम अकेले जा रहे हैं। हाँ उस वक्त में काम आने वाली जो चीज है वो ताल्लुक अल्लाह है, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत और दर्द है, वो काम आने वाली चीज है, इसलिए हम इस वीजे को बढ़ा नहीं सकते। और फिर हमें इसका मालूम नहीं है कि मरेंगे कब, कि जी अभी अभी तो जरा मेरी शादी नहीं, फिर दाढ़ी रख लूंगा, या अभी तो जरा मैं जवान हूं। अरे दाढ़ी तो बुढ़ापे में रखी जाती है मेरे दोस्तों, जिंदगी का हमें मालूम नहीं है, हमारा आखिरत का सफर कब शुरू होगा हमें पता नहीं है दादा, सफर से पहले सफर की तैयारी कर ले। ये माने कि मरने से पहले जो मर जाओ, ये बुजुर्गों का जो ये कौल मशहूर है कि मरने से पहले मर जाओ, क्या मतलब, क्या क्या मरने से पहले आखिरत की तैयारी करो। इसलिए मौत को याद करने के माने यही है, मौत को याद करने के माने नहीं है मौत 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 मौत, ये माने नहीं है, बल्कि मौत को याद करने के माने ये है क्या। देखिए एक आदमी को जिस चीज से मोहब्बत है वो उसका नाम नहीं लेता लेकिन वो उसको खाता, जैसे कबाब से मोहब्बत है, अब वो कबाब को देखते ही मस्त हो जाना अलामत है कि वो कबाब का आशिक है, और जो कबाब को देखे उसको कुछ हो ही नहीं रहा तो उसके बाद आशिक कबाब नहीं है। लेकिन मौत के माने यही है कि आमाले विलायत और अल्लाह ताला की रिदार खुशी के अमाल में आगे बढ़ना, ये अलामत है कि इसको मौत याद है कि भाई मुझे मरने के बाद जवाब देना है, अल्लाह ताला मेरी सूरत को देखेंगे, मुझसे पूछेंगे कि नबी के मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल जैसी तुमने शक्ल क्यों नहीं बनाई, पूछेंगे तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने जिक्र तिलावत जो नेक अमाल करने के ये क्यों नहीं किए, क्यों हसीनों को देख देख कर तुम हराम लज्जत और मजे ऐंठते रहे, इनसे तुमने क्या पाया। तो लादा अल्लाह ताला के सिवा जितनी चीजें मेरे दोस्तों फानी है, माल का जिक्र किया ना, ऐसी हसीन है वही औरत जो अभी हसीन जवान है, अच्छी लग रही है, सबको अच्छी लग रही है, सब उसको देख रहे हैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर, सड़क के किनारे खड़ी है, हर मोटरसाइकिल वाला चाहता है मेरे साथ बैठ जाए, गाड़ी वाला चाहता है मेरे साथ बैठ जाए, पैदल जाने वाले वो भी मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं उसको, उम्र का भी ख्याल नहीं होता कि हम कितनी उम्र हो गई है, बाल सफेद हो गए, हर आदमी देख रहा है उसको, ऐसे ही तमाशा है ना आदमी उसके। लेकिन यही औरत आज 16-18 साल की अच्छी लग रही है ये लड़की, अब वही बुढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए उसके, उसकी कमर झुक गई, आंखों पर 12.5 नंबर का चश्मा लग गया, अब है कोई यार आए उसको कहे नहीं हवा हम आपके आशिक है, तो शख्स की तरह ना करे। एक बस में एक आदमी था, वो एक बुढ़िया को देखे जा रहा था, तो बुढ़िया ने देखा फिर जुना था, फिर देखा फिर ऐसे देखा, उसको गुस्सा आया, 2-3 दफा देखा, उसने कहा ओए तुझे शर्म नहीं आती, तू आती नहीं, इतनी जवान बैठी तू मुझे ही देखे जा रहा, मुझे क्यों देखता है तू। उसने कहा बात यह है कि मैं कबाड़िया हूं, पुराना माल पसंद करता हूं। मेरे दोस्तों मेरे मुर्शिद फरमाते कि जिन हसीनों को तुम देख रहे हो एक दिन ये जो फूल मुरझा जाएंगे, ये मुरझाने वाले फूल है, इनकी जवानी को देख करके इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान रखा कि देखते हैं कि ये हमारे आशिक हैं, ये बंदे हमारे आशिक हैं, ये अपने नफ्स के गुलाम है ये। इसलिए मेरे मुर्शिद ने इसे सुनाया कि आ दमे के दिल बइश्के दही, आ वो सांस वो लवा वो घड़ी कि जिस वक्त बंदा अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने दिल को अल्लाह ताला पर फिदा करता है और अपने दिल को तोड़ता है लेकिन अल्लाह के कानून को नहीं तोड़ता कि हसीन औरत सामने आ गई, अब दिल कहता है इसको देख लो लेकिन वो नजर बचाता है, अपने दिल को तोड़ता है। अब वो उसको मोबाइल मिल रखा हुआ, उसका रिश्तेदार दोस्त मोबाइल भूल गया, अब दिल कहते हैं इस मोबाइल को उठा लूं, उसे क्या पता चलेगा, या माल किसी का है, उसने कहा मौका अच्छा है दुकानदार है नहीं, चलो उठा लो जेब में डाल लो, कई मौके है ना, या गुस्सा आया, अब गुस्से को जब्त करता है क्योंकि गुस्से को नाफिज करता है अल्लाह ताला नाराज हो रहे हैं, चाहे माँ बाप हो चाहे बीवी हो, तो उस वक्त जो अल्लाह के लिए अपने दिल को तोड़ दे, क्या मतलब नजर बचा ली और फजर में उठने को दिल नहीं चाह रहा लेकिन जमात से मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, ठंडा पानी गर्म पानी है नहीं, ठंडा पानी कांटे की तरह चुभ रहा है इसको, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला की रिदा और खुशी के लिए काम किया उसने, नजर बचा ली, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, गुस्से को जब्त कर लिया, अपने भाई के माल की हिफाजत की, चुराया नहीं उठाया नहीं, उसको बता दिया जनाब ये आपके रखा हुआ है देखो मैंने हिफाजत से रखा है, तो उस वक्त अपने दिल को तोड़ा ना, क्योंकि नफ्स और दिल कह रहा था कि ले ले क्या है पता थोड़ी चलेगा, لیکن سبحان اللہ آدم کے دل بعشق دہی کہ اس وقت جو یہ شخص اپنے دل کو اللہ پر فدا کر رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اس کی نظر ہے نا کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہوگا اور اس نے دل کو توڑ دیا. فرماتے ہیں دم خوشبوت واہ یہ لمحہ یہ سانس بہت مبارک ہے کہ جس گھڑی جس لمحہ بندہ اپنے دل کو توڑتا ہے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا یہ گھڑی اور یہ لمحہ بہت مبارک ہے. ہاں دمے کہ دل بعشق دہی واہ 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 کہ وہ سانس کہ جس وقت وہ بندہ اللہ کی رضا اور خوشی میں اپنے دل کو اللہ پر فدا کر دیتا ہے عورتوں کو نہیں دیکھتا. ایسے ہی وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ آئی ہو جن کو دیکھ کر آنکھیں مار رہے ہیں جن کو کہہ رہے ہیں آؤ تمہیں ڈبو ہم کھلائیں گے کوئی بات نہیں تم کھیلو ہم پیسے دیں گے. یار لوگ کہہ رہے ہیں چلو یار آؤ نیو ایئر نائٹ منائے چلو آؤ بدماشی کے لیے چلیں شراب پیئیں تمہیں پلائیں تو اس وقت جو اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑ دیتا ہے واہ یہ محبت میں اللہ کے لیے دل کو توڑنا. میرے دوستو جس لمحہ یہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا بہت مبارک لکھا جا رہا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کیا یاد آیا حضرت والا کے کعبہ شریف کا شعر ہے کعبہ شریف سامنے اور حضرت کا یہ دل پر یہ شعر وارد ہو رہا ہے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے نہ مجھے پھولوں سے مطلب نہ ان پھول جیسی شکلوں سے مطلب نہ ان کی خوشبوؤں سے نہ ان کے رنگ سے. کیوں ان کی خوشبو بھی عارضی ان کا رنگ بھی عارضی. دیکھیں نا کوئی کیسا ہی پھول ہو گلاب کا یا کسی اور کی پھول ہو تو مرجھائے گا کہ نہیں مرجھائے گا اور اس کی خوشبو اس کے رنگ پھیکا پڑے گا اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی سارا یہ تماشا ہوگا. تو کیا فرمائے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت سے اللہ والوں کی صحبت سے یہ درد لیا ہے کہ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب پھولوں پہ نہیں نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. یعنی ہم نے پھولوں سے دل نہیں لگایا ان عارضی رنگوں سے دل نہیں لگایا ان عارضی بہاروں سے دل نہیں لگایا اس عارضی خوشبو سے دل نہیں لگایا بلکہ ہم نے مخلوق سے نہیں خالق سے دل لگا لیا پھول سے نہیں خالق کے پھول سے دل لگایا خوشبو سے نہیں خالق کے خوشبو سے دل لگایا رنگوں سے نہیں خالق کے رنگ و بو سے ہم نے دل لگایا. دادا ہماری زندگی کا دھارا ان پھولوں کے چکر میں نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا دھارا کہیں اور جا رہا ہے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ و بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا جو گرے ادھر زمین پر جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. بندہ زمین پر اللہ کے لیے روتا ہے وہ ستارے وہ آنسو زمین پر گرتے ہیں لیکن اس بندے کی بندگی آسمان پر روشن ہو جاتی ہے. واہ واہ بندے مبارک ہیں. لہذا یہ تو فرمائے کہ جس لمحہ جس سانس اللہ کی رضا خوشی کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی غم ہے گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے دل کو تکلیف ہے مان لو اس تکلیف میں اس کے آنسو بھی نکلتے ہیں یہ جو آنسو ہے میرے دوستو کتنے مبارک آنسو ہیں. اور اس وقت اس بندے کی بندگی عروج پر ہے آسمانوں پر اس کی بندگی جا رہی ہے زمین پر رہ کر آسمان میں ہے یہ زمین پر رہ کر یہ آسمانوں پر ہے. لذا فرمایا آدمے کے دل بعشق دہی آدمے کے دل بعشق دہی ہاں وہ لمحہ وہ سانس کہ جس بندہ اپنے دل کو اللہ کی خاطر سے توڑتا ہے اللہ تعالی کی محبت میں توڑتا ہے اپنے دل کو اللہ تعالی کی محبت میں اپنے اللہ تعالی کے قانون کو بلند کرنے کے لیے وہ اللہ تعالی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو وہ لمحہ بہت مبارک ہے. میرے مرشد کا شعر ہے ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے کہ جس لمحہ اور سانس ہم اپنے مالک اور پالنے والے کو یاد کرتے ہیں اس عالم کے پیدا کرنے والے کو یاد کرتے ہیں وہ لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ رشک فلک آسمانوں پر بھی فلک پر بھی رشک کر رہا ہے وہ لمحہ ایسا مبارک. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے کہ دل بعشق دہی کیسے اللہ کی محبت میں دل فدا کریں خوشی پر ان کی مرنا और जीना ही मोहब्बत है कि अल्लाह की रिदा और खुशी जिस बात से खुश हो वो काम कर ले। अब हमारी अगर उनको हमारी शक्ल पसंद है कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखे, हम रखेंगे, यही तो मोहब्बत है भाई जी। लोगों को अच्छा नहीं लगता, खानदान वालों को, बरादरी वालों को अच्छा नहीं लगता, मोहल्ले वालों को अच्छा नहीं लगता, न लगे, क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम मोहल्ले को अच्छी लगे ना लगे, हम अपनी मर्जी करते हैं। और फिर लैला की मोहब्बत में देखो क्या क्या करता है, तो मौला की मोहब्बत में अल्लाह की रिदा और खुशी के अमाल करता है। नई दाढ़ी अच्छी लगती है, न लगे किसी को, किसी को अच्छी नहीं लगती, मालिक को तो अच्छी लगती है। जुम्मे के दिन सुरमा लगाना सुन्नत है ना, रात में भी सुन्नत है सोते वक्त, लेकिन सुबह साफ कर ले, सुरमगी आंखें लेकर ना घूमे, वरना लोग देखकर आंखें मारेंगे। तो लगाए और साफ कर ले उसको, जुम्मे के दिन भी लगाते। मैंने अपने शेख को देखा, हजरत जुम्मे के दिन सुरमा लगाते थे लेकिन फिर उसको साफ फरमा लेते थे। क्यों? ऐसा ना हो कि सब मुरीदों ने शुरू कर दिया, फिर ऐसे मुरीद भी हैं कि जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं है, फिर सब लोग उनको बैठकर कहेंगे हजरत के मलफूसात तो सुनाइए, आपके चेहरे पर कितना नूर है, फिर सारे लौंडों पर नूर नजर आएगा। इसलिए हजरत वाला ने अपने मुरीदों की तरबियत की खातिर से खुद सुरमा लगाते थे। मैं गवाह इस बात के, क्योंकि मैं हजरत की खिदमत में होता था। हजरत लगाते थे जुम्मे को सुरमा, लेकिन फिर उसको साफ फरमा देते थे, लगाकर सुन्नत अदा कर ली और साफ इसलिए फरमाते थे ताकि मुरीद बेवकूफ गुमराही में न पड़ जाए। क्योंकि एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक मुरीद आया अपने नौजवान अपने बच्चे को लेकर, 10-12 साल का लड़का था। तो शेख ने उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा, तो वहीं एक मुरीद खिदमत में बैठा था, उसने भी शेख की नकल की, उसने भी हाथ फेर दिया सर पर। अब शेख ने देखा तो शेख की अंगेठी चल रही थी, आगे आग जल रही थी, तो शेख ने पांव अपना उस आग में डाल दिया और मुरीद से फरमाया तू भी आग में डाल। कहा हजरत ये तो मुझसे नहीं हो सकता, है कि नकल करो ना शेख की, तुम जब मेरे सर पर हाथ फेरा, जब तुम्हारा ये मकलूब हो जाए कि आग में डालने से तुम्हारा पांव ना जले, तब तुम इस काबिल हो गए कि किसी लड़के के सर पर हाथ फेरो। तुमने अपने नस की वजह से उसके सर पर हाथ फेरा, तुम्हारा नस शामिल था इसके अंदर कि तुमने उस लड़के के सर पर हाथ फेरा। अब देखिए ना, यतीम बच्चा है, यतीम बच्ची है, सब उससे प्यार करने को तैयार है, ये नफ्स है। बेवा को कोई नहीं पूछता, बुढ़ी बेवा को, जवान को तो सभी पूछेंगे। कहते ना गरीब की बेवा सबकी भाभी, हाँ सब भाभी जान। इसलिए भाभी से भी पर्दा है, अपनी सगे भाई की बीवी से भी पर्दा है। गरीब की बेवा सबकी, जवान होगी सब पूछेंगे, बुढ़ी को कोई नहीं पूछेगा। फर्क है ना, क्यों? नफ्स है इसमें शामिल, यानी अपनी हराम लज्जत, अल्लाह की नाफरमानी की लज्जत को वो दरामद करता है। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि लदा नकल ऐसे नहीं। तो हजरत वाला सुरमा लगाते थे, तो मैं वाकया समझाना इसलिए था, वाकया सुनाना था, ताकि इसलिए भी समझा दिया कि नकल ना करे, लगाए साफ कर ले, सुन्नत अदा कर ले, लेकिन अपनी सुरमगी आंखें लेकर घूमे। खुसूसन ये जमाना कितना खतरनाक है, आज पहले जमाना और था, आजकल तो लड़कियां भी इशारे करती हैं, लेकिन न पूछना मुलजा, हमें तो किसी ने इशारा किया ही नहीं आज तक, पता नहीं आप कैसे कहते हैं। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला के किसी ने इशारा किया नहीं, शुक्र अदा करना चाहिए, ये बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। ये ना बोलना कि हमें तो किसी इशारे के, ऐसे ही बस बोलते हैं। अब अच्छा बता दे कहां करती है इशारे, तो हम भी तो देखे हमारी क्या वैल्यू है। अरे शुक्र अदा करो, अगर मखलूक की नजर में, हसीनों की नजर में तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तो अल्लाह की नजर में तो है। खैर, तो वो मैं बता रहा था, उस अंधे ने आंखों में सुरमा लगाया जुम्मे के दिन, तो उसकी बीवी ने कहा बुढ़े तेरी अंधे, उसने कहा अंधे तेरी आंखों में सुरमा अच्छा नहीं लग रहा। अब मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि उसने कहा कि सुरमा तुझे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने महबूब की सुन्नत की खातिर से अल्लाह को दिखाने के लिए लगाया है। लिहाजा दाढ़ी को अगर कोई कहे कि तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, तो कह दो कि दाढ़ी हम तुम्हारे लिए नहीं, अल्लाह के लिए रख रहे हैं। अगर हमें मूछे साफ करने से, जो सुन्नत और आला दर्जा ये है, अगर इस मूछे साफ करने से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, हमें अल्लाह को तो अच्छा लग रहा है, हम तुम्हें नहीं दिखा रहे, अल्लाह को दिखा रहे, हम तुम्हारी खातिर नहीं। लिहाजा उस वक्त जो उसको मखलूक सताए या उस पर एतराज करे, उस पर फिक्रे कसे, उस पर जुमले कसे, लेकिन उसका और दिल टूटे, बस यही वो लम्हा है। आ दमे के दिल बैशके दही, दमे खुशबूत वो सांस कि जिसमें दिल अल्लाह पर फिदा हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान हो जाए, ये बहुत मुबारक घड़ी है। इसलिए मोहब्बत क्या है? खुशी पर उनकी मरना और जीना ही मोहब्बत है, खुशी पर उनकी मरना और जीना ही मोहब्बत है। न कुछ परवाए बदनामी, न कुछ परवाए आलम है। आह, मखलूक की परवाह ना करे। देखो दुनिया की मोहब्बत में परवाह करता है किसी की? किसी को लड़के से मोहब्बत हो जाए या किसी औरत से मोहब्बत हो जाए, वो परवाह करता है किसी की? सारी दुनिया खातिर में कहता बस मेरा लौंडा खुश हो जाइए, बस मोटरसाइकिल भी दे रहा है उसको पेट्रोल डाल के, और कोई और मांगने के लिए आता है उसको देता ही नहीं है, वो लौंडे को दे रहे हैं सब। उसको कैरम बोर्ड भी खिला रहे हैं, उसको जीएम भी खिला रहे हैं, पान भी खिला रहे हैं, उसको ईद के कपड़े के लिए पैसे भी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह की माँ बाप को पैसा नहीं देता, अजीब मामला है। यानी लड़कों पर औरतों पर खूब खर्च कर रहे हैं, माँ बाप को पैसा नहीं देता। तो अल्लाह की रिजा के अमाल करना, जिस बात से अल्लाह ताला खुश हो वो काम करना, और जिस बात से अल्लाह ताला नाराज हो वो काम न करना। अरे यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत है भैया। अब वो गुनाह से नाराज होते, उनको पसंद नहीं कि मर्द की शलवार टखनों से नीचे लटकी भी हो, वो ऊपर रखे, कुर्ता ऊपर पहने, शलवार ऊपर रखे, ये इस बात से खुश हो, बस मालिक खुश होंगे, हम वही करेंगे। हमारी दाढ़ी उनको पसंद है, हम दाढ़ी रखेंगे। हमारा नजरे वो झुकाना उन्हें पसंद है, हम नजरे झुकाएंगे। उनको पसंद नहीं है कि हम सूद का पैसा लें, हम नहीं लेंगे। बस जिस बात से वो खुश हो वो काम करेंगे, और जिससे खुश नहीं हो, नाराज हो, वो काम हम नहीं करेंगे। यही मोहब्बत है। मेरे मुर्शिद फरमाते, देखो जिसे देखो उसी के सर में है सौदा किसी शय का। हर शख्स को एक धुन लगी हुई है कि मुझे इतना माल कमाना है, ये दुकान बनानी है, वो दुकान बनानी है। हर शख्स को एक धुन लगी हुई ना, मुझे शादी करनी है, किसी को क्या करना है, किसी को, हर एक की एक धुन है, हर एक का एक कहते टारगेट होता है। देखो उसी के घर में है सौदा, जिसे देखो उसी के सर में है सौदा किसी शय का, मगर सौदाए जाना अकबर सौदाए आलम है। वो अल्लाह का आशिक कैसा है, उसने ये धुन लगाई है कि आरजूए खून हो या हसते पामाल हो, आरजूए खून हो या हसते पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। उसने ये धुन लगाई है कि मुझे अल्लाह को पाना है, और अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह की रिजा खुशी के अमाल भी कर रहा है, और अल्लाह वालों के पास भी जाता है, क्योंकि उनसे मिलने की है यही इकरा, मिलने वालों से राह पैदा कर। अल्लाह को पाने का तरीका अल्लाह वालों से सीखा जाता है। उसने ये धुन उसको लगी हुई है कि मुझे अल्लाह को पाना है, ये उसे धुन लगी हुई है। जिसे देखो उसी के सर में है सौदा किसी शय का, मगर सौदाए जाना अकबर सौदाए आलम है। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, बहुत तोहफे मिले दुनिया में, लेकिन क्या कहूं ऐ दिल। हमें गाड़ी मिली, इज्जतें मिली, सलूट मिला, आओ बादशाह आओ मिला, कबाब शामाए कबाब, बिरयानी खाई, जवानी, लिबास, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब मिला, सब नेमतें, माशाल्लाह नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस नेमत की बड़ी नेमत यह है कि वो माल मिले तो उसको अल्लाह की खुशी में इस्तेमाल करे, ये बड़ी नेमत है। कि माल मिलना इतनी कमाल नहीं है जितना माल को अल्लाह पर खर्च करना कमाल है। तो हमें ये सब नेमतें मिली, बहुत तोहफे मिले दुनिया में, लेकिन क्या कहूं मैं दिल, ये तोहफा दर्द दिल का हासिले नेमाए आलम है। यानी अल्लाह की मोहब्बत का जिसको ये दर्द हो जाए, ये दर्द पैदा हो जाए जिसके दिल में, दर्द दिल क्या है, दर्द दिल ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का वो दर्द है कि मैं जिस बात से अल्लाह खुश होगा मैं वो काम करूंगा, और जिस बात से अल्लाह ताला नाराज होगा मैं वो काम नहीं करूंगा, इसको बोलते हैं दर्द दिल। लिहाजा अल्लाह ताला की रिजा खुशी की खातिर से गुनाह से बचने में बहुत दिल चाहता है, बहुत गो वलवले दिल के हमें मजबूर करते हैं कि हम भी इन हसीनों को देखें, इन औरतों को देखें, हम भी इनसे मुंह काला करें। उसका दिल बेचैन होता है, तड़पता है देखने के लिए, लेकिन वो दिल को तोड़ता है और नजर नहीं डालता, نظر نیچی کرتا ہے، نظر نیچی کرنے میں اس کے دل پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا ہو جاتا ہے، رونے بھی لگتا ہے وہ تکلیف کی شدت سے. لیکن سبحان اللہ، یہی تو وہ وقت ہے میرے دوستو، اور یہی وہ دل ہے، اور یہی چیز درد دل کہلاتی ہے، اور یہی وہ دل ہے جس دل کو اللہ تعالیٰ اپنے رہنے کا ٹھکانہ بناتے ہیں. یہی وہ دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے رہنے کا ٹھکانہ بناتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں غیر اللہ بھی بسائے، ناپاک ان حسینوں کو بھی بسائے، اور اس دل میں پاک مولا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں محال استو خیال استو جنو، ایسا یہ پاگل پن ہے کہ دل میں گندگی بھی بسا اور دل میں اللہ پاک کو بھی لے کر آؤ. اللہ پاک ہے، پاک دل میں آتا ہے، نہ جس دل میں ناپاکی گسڑی اس ناپاک دل میں اللہ نہیں آتا. فرمایا تم اس کو پسند نہیں کرتے، جہاں مردہ لیٹا ہوا تم وہاں بریانی اور کباب کھاؤ گے، اپنی پسندیدہ چیز کھاؤ گے جہاں ایک مرد لاش رکھی ہوئی. فرمایا آ دل میں تو غیر اللہ کو بساؤ، تمام گناہوں کی غلاظت گندگیاں ان حسینوں کو خیالات اور فلمی اداکاروں کو دل میں گھسائے، اور چاہتے تو اس دل میں اللہ بھی آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھو نا پانی اور پیشاب جمع ہو سکتا ہے بھائی؟ پانی کو جمع کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پیشاب سے دور رکھا جاتا ہے، اس کو غلاظت اور گندگی سے دور رکھا جاتا ہے، پاک پانی ہوتا ہے. اور گٹر اور ڈھکن بھی لگاتے ہیں، پانی کی ٹنکی کا ڈھکن بھی لگاتے ہیں اور گٹر کی لائن سے بھی اس کو دور رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے دل جو ہے یہ اللہ کی محبت کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کے رہنے کا ٹھکانہ ہے، اس کو غیر اللہ سے دور رکھنا ہے. نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا. اس دل سے نکالو غیر اللہ کو، مت داخل کرو اس کو بھائی دل میں، تب اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنائیں گے. ناپاک دل میں تشریف نہیں لاتے. رضا اللہ تعالیٰ کی درد دل کیا ہے؟ درد دل یہ ہے کیا اپنے اللہ کی دیدار و خوشی کے لیے اپنے دل کو توڑ دینا اور مالک کو ناراض نہ کرنا. ہر لمحہ سانس یہ غم ہو اس کو کہ میری کس بات سے اللہ خوش ہوگا، میری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے. لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید نہیں اشد محبت کرتے ہیں. شدید، شدید تر، شدید ترین استعمال کرتے نہیں، قوی، قوی تر، قوی ترین، تیز، تیز تر، تیز ترین. تو شدید ترین محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. دنیا سے ان کو شدید محبت ہے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے کاروبار سے، اپنی کار سے، اپنے موبائل سے، ایئر کنڈیشن سے، شامی کباب، بریانی، چکن کڑھائی سے ان کو شدید محبت ہے. لیکن ہماری محبت ان تمام محبتوں پر غالب ہے. واہ، اور یہی چاہیے. اگر بیوی سے کوئی محبت کرتا ہے بری بات نہیں، ماں باپ سے محبت کرتا ہے بری بات نہیں ہے، مطلوب ہے، ہونی چاہیے. اولاد سے محبت ہونی چاہیے. اپنی گاڑی اچھی لگتی ہے بری بات نہیں ہے، اپنا مکان اچھا لگتا ہے بری بات نہیں ہے، روپیہ پیسے سے محبت ہے بری بات نہیں ہے. لیکن اللہ کی محبت غالب ہو کیسے؟ زکات کا وقت ہے، لو بھائی لو. یہ نہیں کہ ترکیبیں بچانے کی کر رہے، نہیں، لو بھائی. فطرہ آیا، لو بھائی. مسجد بن رہی ہے، لیجیے بھائی. مدرسے کی تعمیر، مدرسے میں ضرورت، لو بھائی. کسی غریب کی ضرورت ہے، لو بھائی. حالانکہ دل اس کی تکلیف بھی ہو رہی ہے، ہاں، خرچ کرنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہے، یار میں پیسہ دے رہا ہوں، دل میں دکھ رہا ہے. کیونکہ انسان پیسہ کماتا ہے تو آسان تھوڑی ہے خرچ کرنا، دل میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس تکلیف کے باوجود اللہ کی رضا اس کی نظر میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے. لو بھائی، دل کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے. تو بس یہی ہے، کیا ہے؟ یہی ہے اشد حب للہ، یعنی اللہ کی محبت اشد ہو گئی اس کے دل میں. واہ، یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس مقام کو کہ اللہ کی محبت تمام تعلقات پر غالب آ جائے. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے. یہی ہے صحبت کا مقصد. دیکھیے ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے بھی عطا فرمایا پچھلے ہفتے، ہمارے کسی دوست کے ابا کا انتقال ہو جائے. اب ہم اس کے گھر گئے تعزیت کے لیے، تو اب ہمارے ابا کا تو نہیں، اس کے ابا کا انتقال ہوا ہے. دادا جو اس کو غم ہوگا ہمیں نہیں ہوگا نا، یہ ایک فیکٹ ہے نا، حقیقت ہے. لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس مجلس میں، چونکہ وہ غم کی مجلس ہے، ہر آدمی کا دل عجیب ہوتا ہے، افسردہ. اور وہاں جا کر وہ اس کے رونے سے ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو غم کی کیفیت کس کی ہے؟ ایک عام آدمی کی. اس غم کی کیفیت کی وجہ سے ہر ایک کو غم ہوتا ہے. ایک آدمی کے غم کی وجہ سے اس کے جتنے دوست احباب، وہ اہل مجلس جتنے بیٹھے ہیں، سب پر غم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ तो आ एक आम आदमी की दिल की कैफियत का इतना असर है कि हाजरीन मजलिस के दिल पर उसका असर होता है। तो अल्लाह वालों के जो दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और ताल्लुक में अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की जो दौलत है, अल्लाह ताला के जीने पर मरने की जो कैफियत है, कैफियत एहसानी है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, तो वो जिसके दिल में होगी उसके पास बैठने वालों पर उसका असर होगा कि नहीं होगा। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, मत फिक्र करो उसको, असर होगा कि नहीं होगा। जब एक आम आदमी के दिल में गम होता है उसका असर दूसरे के दिल पर होता है, तो जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की कैफियत होगी, अल्लाह पर जीने मरने की कैफियत होगी, जिसके दिल में यह एहसास होगा कि हर वक्त अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, जिसके रिजा बिल कजा की जिसको कैफियत हासिल है, जो अल्लाह ताला के हर फैसले पर राजी है और अल्लाह पर जीने मरने का आज़्म जिसके दिल के अंदर है, ये कैफियत है उसकी, तो उसका असर हमारे दिल पर होगा कि नहीं होगा। बस यही राज है सुकून मा सादिक, अल्लाह वालों की सोबत का राज यही है कि अल्लाह वालों के साथ बैठे तो उनके दिल में जो अल्लाह ताला की मोहब्बत और ताल्लुक की जो कैफियत है वो हमारे दिल पर मुंतकिल हो जाएगी। लिहाजा अगर हम उस दोस्त जिसको गम है जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे तो हमारी वही कैफियत हो जाएगी, वरना मजलिस में बैठेंगे उठकर जाएंगे फिर वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन अगर उससे हम जल्दी जल्दी मिले वो कैफियत हमारे ऊपर भी आ जाएगी। तो इसी तरह से अल्लाह वालों से जब जल्दी जल्दी मुलाकात करेगा तो अल्लाह की मोहब्बत की कैफियत हर वक्त उसके दिल में रहेगी, उसको हर वक्त ये इस्तेजार रहेगा मुझे अल्लाह अपने मालिक और पालने वाले को राजी और खुश करना है और एक लम्हा और एक सांस भी उनको नाराज नहीं करना, ये कैफियत उसके अंदर राशिक हो जाएगी। इसलिए अल्लाह वाले एक तो सोहबत बताते हैं कि बैठो उनके साथ, दूसरा जिक्र करें, जिक्र का एहतमाम करें, एक तस्वीर ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ लिया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह जिक्र करे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे शरीफ को पूरा कर ले, एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ लिया करे, एक तस्बीह अल्लाह का नाम है, अल्लाह जल्ला जलालु व तआला शानु, अल्लाह 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 जल्ला जलालु व तआला शानु, अल्लाह का नाम ले, एक तस्बीह की पढ़ ले, ये दो तस्बीहात पढ़ ले, तो उससे क्या होगा, दिल में नूर जमा होगा, नूर पैदा होगा, और अपनी आंखों का ढक्कन बंद करके रखे, आंखों का नलका, कान का नलका, गाने न सुने, गीबत न सुने, जबान का नलका, गाली न दे, झूठ न बोले, नलके को बंद करे, हाथों से किसी गैरुल्लाह को न छुए, ये बंद करके रखे, फिर देखे वो नूर जमा होगा, फिर क्या होगा, आ मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, जिस्म को अपना सा करके ले चलिए अफलाक पर, जिस्म को अपना सा करके ले चली अफलाक पर, अल्लाह अल्लाह ये कमाले रूहे ज्वाला देखी, वो शेख के ऐसा नूर जमा होगा कि उसका जिस्म जमीन पर होगा और रूह अर्श आज़म पर होगी। और मैं वल्लाह मेरे मुर्शिद कसम खाकर फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने औलिया को, अपने दोस्तों को, अपने आशिकों को, अपने प्यारों को जो लज्जत अता फरमाते हैं, बादशाह क्या जाने, और ये हसीनों के चक्कर में घूमने वाले क्या जाने, ये रोमांटिक दुनिया, ये नंगी फिल्में देखने वाले क्या जाने, ये मालो दौलत में घूमने के मजे उड़ाने वाले और शामी कबाब वाले क्या जाने, अल्लाह ताला अपने आशिकों को जो लज्जत अता फरमाते हैं, बजाय उनके पास लिबास अच्छा ना होगा, फटे हुए कपड़े होंगे, कोई शानदार कालीन नहीं होगा, लेकिन जो दिल में लज्जत होगी, बादशाह क्या जाने, बादशाहों के तख्तो चाज देखने वाले क्या जाने, शाहों के सरों में ताजे गरा से दर्द सा अक्सर रहता है, शाहों के सरों में ताजे गरा से दर्द सा अक्सर रहता है, और अहले वफा के सीनों में एक नूर का दरिया रहता है। अहले वफा कौन लोग हैं, अहले वफा वो लोग हैं जो अल्लाह के वफादार है। बताइए हर आदमी क्या चाहता है, मेरा बेटा, मेरा मुलाजिम, मेरा दोस्त मुझसे वफा करे, चाहते नहीं चाहता, तो क्या हम अल्लाह से वफा ना करें, हम अल्लाह के वफादार बंदे ना बने, अल्लाह के वफादार बंदे कौन है, जो हर लम्हा सांस अल्लाह पर राजी की पर फिदा होते हैं, एक लम्हा एक सांस उनको नाराज नहीं करते। वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसमें राहत है जरा, मैं जान बुझ के रखा, अल्लाहुम्म सल्ला अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे, या अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे, हम सबको अपनी मोहब्बत कामिल अता फरमा दे, या अल्लाह अपनी रिजा और खुशी के आमाल अता फरमा, अपने नाराजगी वाले आमाल यानी गुनाहों से हम सबको 100% बचा लीजिए, या अल्लाह गुनाह करते करते हम कब्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, या अल्लाह یا اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما، اس گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. گناہ کر کے یا اللہ ہم نے اپنی زندگیوں کو پریشان بے چین برباد کیا، اپنے ایمان، اپنے مال، اپنی جوانی کو ہم برباد کر رہے. یا اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، اس دل کو ریکنڈیشن فرما دیجیے، آپ کی رضا اور خوشی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جلدی فرما اپنے فیصلہ فرما کر ہم سب کو اپنا ولی اور دوست بنا دیجیے، ایسا نہ ہو کہ موت کی آندھی آ کر ہماری زندگی کے چراغ کو گل کر دے اور ہم اسی نافرمانی، فسق اور گناہوں اور ضلالت اور اندھیروں میں پڑے رہ جائیں. یا اللہ جلدی اپنے کرم سے ہمارے لیے فیصلہ فرما، ہم سب کو جس فرما کر اللہ والا بنا دیجیے، اپنے اولیاء کی حیات عطا فرما دیجیے اور اپنے اولیاء والی موت عطا فرما دیجیے. ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، اپنا تعلق خاص عطا فرما، ہر بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے ہم سب کو بچا لیجیے، جملہ راحت عافیت اور خوشی عطا فرما. ان دعاؤں کو ہمارے حق قبول فرما، ہمارے گھر والوں، دوستوں، رشتے دار، ہمارے احباب، حاضرین، غائبین اور سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما.